मैं मुख्तसर वक्त में के अंदर अपनी जो कहानी है वो आपको सुनाना चाहूँगा कि सबसे पहले हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ था, और वहाँ पे हमारी सोसाइटी में, माशरे में अगर हमारे वालिद साहब ने हमें पढ़ाया, क्योंकि 1998 में मेरे वालिद साहब की जो मैट्रिक थी उसके बाद वो आगे नहीं पढ़ सके, उनकी शादी हो गई। देन उनका मिशन और मकसद था हमें पढ़ाना, लेकिन फिर भी वसाइल नहीं थे। देन जब मैं 8 क्लास में हुआ तो मुझे याद है मैंने वो कपास होती है ना, तो कपास के दरमियान वे रास्ता बनाने के लिए चीरे निकाले जाते हैं, जिनको चीरे निकालना कहते हैं सराकी में, तो फर्स्ट टाइम उधर जाता, सेकंड टाइम अपना ख़र्चा पूरा करने के लिए वो मैं इलाके के चीरे निकालता। फिर उसके बाद आ गया मैं 9th में, सिरानी स्कूल था वहाँ पे, वहाँ से मेरी स्टडी कंटिन्यू हुई। वहाँ पे फर्स्ट टाइम स्कूल जाता, 3 बजे जैसे ही वहाँ से मैं वापसी आता तो उसके बाद मैं चौकियाँ देना शुरू कर देता था, फसलों के अंदर चौकियाँ देना, लोगों की फसलों के अंदर। एक एकड़ का ठेका ले लिया, एक हफ्ते में कंप्लीट कर दूंगा जी। अब वहाँ से जो पैसे मिलते, ये बात नहीं थी कि वाले साहब दे भी देते थे शाम हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे वाले साहब को परेशानी हो और मैं ख़ुद से करके ये करूँ। उसके बाद अल्लाह के फजल करम से 900 अबाउट मार्क्स आए मैट्रिक में। उसके बाद मैं आ गया पंजाब कॉलेज में। अब एक जज्बा था कि सारे पंजाब कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पर एक आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अब फर्स्ट टाइम पंजाब कॉलेज में, वहाँ से जैसे ही मैं हाईएस्ट पे पहुँचता, उस स्टाफ पे बंदा खड़ा होता था जिस बंदे का नाम साजिद था, और वो बंदा मुझे वहाँ से उठाता, घर से चेंज करवा के और पल्लेदारी पे ले जाता। और याद रहे, पल्लेदारी के लिए कभी भी मैं इस मुँह से नहीं गया। पल्लेदारी करने जब मैं जाता था तो नकाब करके जाता था, क्योंकि उस वक्त मैं यूँ समझता था कि खुदा न खुदा मेरे अगर किसी दोस्त ने देख लिया कॉलेज वाले ने, क्योंकि कॉलेज में रेपुटेशन यूँ थी कि मेहताब अली को एक मोटिवेशन स्पीकर समझा जाता था, कि जो भी क्लास खाली है हुई ब्रेक के टाइम वहाँ पे जाके अपना लेक्चर शुरू कर दिया और उनको झाड़ के दे दिया। मतलब उसमें से 15 बंदे बैठे हैं तो 15 में से 10 ने सुनना था, 5 बाहर चले जाते, और जो वहाँ पे बैठ के एक दूसरे के साथ टॉक करते तो उनको इकबाल का शेर सुना देता कि तहजीब सिखाती इंसान को, जिन्ने का सलीका इल्म से जायल की जालत नहीं जाती। वो बच्चे बेचारे मदहूम हो के वहीं पर बैठ जाते कि यार ये मीठी मीठी हमारी इंसल्ट कर रहा है, तो बेचारे खामोश होकर मेरी सुनते थे।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अभी बहुत सी मुफीद बातें बाकी हैं। मैं पिछले कई सालों से ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, इसमें मैं और मेरी टीम कोशिश करते हैं कि इन वीडियोस की क्वालिटी, इनकी रिसर्च और इसकी टेक्निकल प्रेजेंटेशन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में अगर आप पैट्रियन के थ्रू हमारी कॉज को सपोर्ट करना चाहें तो उससे हम और बेहतर तरीके से खैर का ये पैगाम दुनिया के सब इंसानों को मुफ्त पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया।
और फिर वहां से जैसे ही छुट्टी होती,
पल्लेदारी में क्या सामान उठाते थे, कैसे?
पल्लेदारी में ना वो जो मेन था वो गंदम उठाना था, गंदम उठाना, फिर उसके बाद कपास उठाना हो सकता है, और फिर उसके बाद ये जो मूंगी वगैरह आती है, मूंगी वगैरह आ जाती थी, मकई वगैरह आ जाती थी। मतलब उसके जैसे जैसे सीजन इंक्लूड होता कि कोई दूसरी चीज़ आती हम भी उसी में शुरू हो जाते। मतलब उसमें 3-4 मंथ का एक सीजन होता है ना देहात के अंदर, तो वहाँ से हमने स्टार्टअप किया। उसके बाद पल्लेदारी से जब मैं इधर मेरी इंटरमीडिएट हो गई, उसके बाद फिर कोरोना आ गया। अब कोरोना के दौरान एक तो मैं तकरीबन 6 मंथ तक एक एक्सरे वाली दुकान थी, मैं वहाँ पे खड़ा रहा, लेकिन वो भी डेली बेसिस का 50 रुपया 100 रुपया देता, जिससे फिर खर्चा पूरा ना होता। अब क्या किया जाए? अब उसके लिए फिर मैं चला गया खाद फैक्ट्री, शायद आपने सुना होगा नाम, खाद फैक्ट्री है इधर सादकाबाद में, सोना यूरिया की। वहाँ पर मेरा भाई था छोटा फलाक शेर, मैं उसके पास चला गया, और वहाँ से मेरे उस भाई ने क्या किया, मुझे कुछ दिन के लिए वहाँ पे रिहाइश दी। वहाँ पे मैं काम ढूंढता रहा, वहीं पे पल्लेदारी का फिर काम वही मिल गया, क्योंकि अंदर से ना गाड़ियाँ फुल होके आती हैं 1000-1000 बोरियों की, लेकिन हमारी जो रोड्स हैं वहाँ पे 800 बोरी एक ट्रक के ऊपर चल सकती है। अब 200 बोरी जो एक्स्ट्रा थी उसको किसी दूसरे ट्रक के ऊपर डालना होता था। इस तरह से करते कराते वहाँ से मैंने तकरीबन कोई 12,000 इकट्ठा किया, और उस 12,000 से इकट्ठा करने के बाद यहाँ से आके मैंने अपना ADP में एडमिशन ले लिया। और देन इसी के साथ एक जो मेरा मिशन और मकसद था जिसके लिए मैंने पाकिस्तान नेवी छोड़ी थी, और पाकिस्तान नेवी मैंने उस सूरत में छोड़ी थी क्योंकि मैं पंजाब कॉलेज में था, ये मुझे डिफरेंट जगह पे स्पीचेस के लिए ले जाते थे, UCP में लेके आए, वहाँ से मैंने अवार्ड जीता, BZU में लेके गए, वहाँ से मैंने अवार्ड जीता, फिर उनका एक होता है मीट कम्पीट उसमें लेकर गए, तो वहाँ से मैंने अवार्ड जीता। और देन उसके बाद अबाउट BZU से भी उसी दौरान जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था उसी दौरान एक कंपटीशन हो रहा था, एक ऑनलाइन कंपटीशन था, उसमें भी मैंने हिस्सा ले लिया, उसमें भी मेरी 3री पोजीशन आ गई। अब उसकी तैयारी का जो तरीकाकार है वो भी बड़ा मुनफरद था कि वो और जो पल्लेदार बैठे वो गाने सुनते, मैं किसी ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच लगा के वो सुनता कि उसका तरीकाकार कैसे, ये कैसे बोल रहा है और मैंने अपनी स्पीच में कैसे बोलना है। उसमें फिर तीसरी पोजीशन आ गई। फिर जब मैं यहाँ पे आया और अपनी स्टडी मैंने कंटिन्यू की, तो उसके साथ एक जो मेरा दूसरा मिशन था वो था ऑर्फन बच्चों की कफालत वाला। अब उसके लिए मैंने पाकिस्तान नेवी छोड़ी थी, क्योंकि पाकिस्तान नेवी मैंने दो कामों की वजह से छोड़ी थी, एक टीचर और ट्रेनर बनने के लिए और दूसरा ऑर्फन बच्चों यतीम बच्चों की कफालत के लिए। अब फिर उसके लिए मैंने तकरीबन कोई 15,000 इकट्ठे किए, पहले एक दो इधर से उधर से करके, और अपने इलाके से जो ऑर्फन बच्चे थे ना वैसे ही मेरे बचपन से दिल के करीब थे। मतलब अपने इलाके में जाता अगर कोई बच्चा खेल रहा है उसको टॉफ़ी दे देता और पूरा हफ्ता मेहताब भाई की वो गुण गाता, और जब दूसरी बार जब भी वो देखता कि मेहताब भी घर आए हुए हैं वो खुद मिलने के लिए आ जाते थे। अब उनको मैंने मोटिवेट किया कि बेटिया मेरे साथ चलो लोधरा में, हम लोधरा में रहेंगे, हम आपको मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप बड़े इंसान बनोगे, ये वो इन तमाम गोबर वगैरह से निकल जाओगे, ये उनको मोटिवेट करते करते वहाँ पर ले आया। फिर वो बच्चे मेरे पास आ गए, फिर वहाँ से
कि आपने उन बच्चों को अपने साथ रखा हुआ है।
हाँ जी,
वो आपके बेटों की बेटियों
वो अब
बच्चे
नहीं, सारे बच्चे ही हैं, बॉयज ही हैं सारे, अब वो सात बच्चे हैं। अब
तो वो सात बच्चे इसने अपने साथ लिए, अब अपने इसके रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं थे लेकिन सात बच्चे इसके साथ घर पे रहते हैं,
ऐसा ही बात है,
और वो इसके बच्चे हैं
क्योंकि मैंने उनको अपना बच्चा समझा। अब पर इसके लिए मैंने ये किया कि अब क्योंकि चैरिटी मांगने के लिए ना एक बंदे के पास गया, वो बंदा एक मतलब वो एमपीए था, उसने कुछ सात चक्कर लगवाए। सात चक्कर लगवाने के बाद मुझे कहता है कि आप ना पढ़े लिखे लग रहे हो, जाओ अपनी ज़िंदगी बनाओ और ये काम वो फराडिया लोग करते हैं। मैंने उनको कहा कि सर आप दें या ना दें, मैं अपनी किताब भी लिख चुका हूँ, मैं फलां क्लास में पढ़ता भी हूँ, मैं बीएस भी कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देना चाहते तो ना दें, आप मेरे मिशन को तो बुरा भला ना कहें। मेरे लिए एक वो हजूर की हदीस मैंने सुनी हुई थी कि बेहतरीन दस्तरखान वही है जहाँ पर यतीम बैठ के खाना खाता है। जब मैं उनके साथ खाना खाने के लिए बैठता तो मैं ये समझता कि सबसे बेहतरीन दस्तरखान पे मैं बैठा हूँ। अब एक ही हदीस के जो यतीम की कफालत करता है वो ऐसे होगा जन्नत में, दूसरी मैंने ये सुन रखी थी, बस यही मेरे लिए मोटिवेशन का जज्बा था। फिर उसके लिए अब उनका खाना पीने के अखराजात पूरे करने के लिए मैंने दो प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, क्योंकि फिर वो मेरे बच्चों की जो तरबियत थी ना उस तरबियत को देख के मुख्तलिफ मेरे इलाके वालों ने कहा, हालाँकि वही इलाके वालों ने पहले मेरा मजाक उड़ाया कि जब मैंने बच्चों को लेकर गया ना कि देखें भाई अब ये मलिक असलम कहता था कि मेरा जो बच्चा है वो बड़ा बेहतरीन तलीम हासिल कर रहा है और आला तरक्की कर रहा है, ये उसकी तरक्की है, नौकरी वो कर नहीं रहा, और दूसरों के बच्चों को लेकर ना उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो बड़ा एक मायूब वर्ड है, मैं यूज़ नहीं कर सकता कि दूसरों के बच्चों की वो धोएगा। चलें भाई ठीक है, मैं फिर आ गया। वालिद साहब भी कहते कि आप किस फील्ड में जा रहे थे, और मैंने वालिद साहब को कहा कि आप मुझे 2 साल दें, मैं इंशाल्लाह आपको मनवा के दिखाऊंगा कि वो जो मैंने पाकिस्तान नेवी छोड़ी थी वो मेरा फैसला ठीक था। अब उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करना पड़ी थी। अब वो जो बच्चे मेरे पास मौजूद थे उनका ख़र्चा पूरा करने के लिए फिर मैंने 3 ट्यूशन रख लिए, और 3 ट्यूशन वालों को भी मैंने वाज़े तौर पर कह दिया कि मैं इतने पैसे लूँगा, क्योंकि पहले मुझे ट्यूशन पढ़ाने का रुझान नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी इतने पैसे लूँगा, मतलब एक ट्यूशन था उसको कहना, मैंने कहा 9,000 लूँगा, इससे 1 रुपया कम नहीं होगा, हाँ ये जो मेरे पैसे होंगे मेरे इस पर्पज़ में जाते हैं, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो फिर वहाँ से 2 ट्यूशन वो मैंने स्टार्ट कर लिए, अबाउट 1 9,000 का था, 11,000 का, वहाँ से जितना भी आता है 10,000 किराए पे मैंने मकान लिया हुआ। अब जो बच्चे थे वो सैलानी दस्तरखान, शाम का खाना सैलानी दस्तरखान पे खाते, दोपहर का और सुबह का खाना वहीं पे खाते अपने मकान में। मतलब सुबह सवेरे मैं भी तैयारी वगैरह करके, एक बंदा था साजे साहब वो बना लेते खाना, सारे बच्चे दस्तरखान पे बैठ के खा के, वो बच्चे स्कूल और मैं अपने स्कूल पढ़ाने के लिए। तकरीबन ये 2 साल का ये सिलसिला इस तरह से चलता रहा। उसके बाद एक जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद एलिजियम स्कूल है वहाँ पे मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी, वहाँ पे मुझे जो पैकेज था वो 25,000 मिल गया। मतलब मेरे उसमें 4 लेक्चर थे 25,000, लेकिन अब वहाँ पे भी मैं सबसे छोटा टीचर था। अब सबसे छोटा टीचर होने की वजह से वो मुख्तलिफ लोगों का ये रुझान था, और उनका जो कोऑर्डिनेटर था उनको पता लगा ये मोटिवेशनल स्पीकर है, उसने खुद से ये परसेप्शन लगा दी, ये गुमान लगा दिया कि शायद ज़्यादा बोलता है। अब उसमें मेरी आदत थी कि ना जहाँ से मेरा इरादा बना कि अपना इंस्टीट्यूट हो, अगर मैंने अपना पैगाम पहुँचाना है तो अपना इंस्टीट्यूट हो। तो देन वहाँ से एक दिन मैं जा रहा था, तस्वीर मेरे हाथ में थी, वो प्रिंसिपल ने रोक लिया। हालाँकि मैं 3 पीस में था, क्योंकि वो जो मेरे स्कूल है जो मैं टीचिंग करता हूँ उसका चले प्रोफेशनल लिबास अगर यही सही, तो इसमें मैं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो ये हाथ में तस्वीर, मैंने कहा सेकेंड ईयर गर्ल्स में जा रहा हूँ, अगर मैं हाथ में रखूंगा भी सही तो एक अच्छा गुमान है, बच्चों को तरगीब होगी अच्छा ही के। नहीं नहीं सर, आप इसको ना जेब में डाल के जाएं, चाहे अच्छा भी है फिर भी जेब में डाल के जाएं। वहाँ से मैं जेब में डाल के चला गया। सर से जिस तरह से मुलाकात हुई, वो भी एक वो हैं वहाँ पे मैडम आरफा साहबा, डॉक्टर समीना मतलूब की जो हैं वो बहू हैं, उनसे मैंने कहा, उनके यहाँ आपने शायद आना था, उनका जो है समीना मतलूब हेल्थ इंस्टीट्यूट में, लेकिन आप नहीं आ सके। लेकिन फिर उसके बाद मैंने वहाँ से पूछा कि सर से मैंने मिलना है, बड़ा एक इश्तियाक था। जब पहली बार आया थी सर के सामने, मैंने बहुत सी बातें की कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ये हूँ वो, सर ने सारी मेरी बातें तवज्जो सुनी। उसके बाद सर का मैंने एक इंटरव्यू भी लिया, और इंटरव्यू लेने के बाद फिर जब मैं वापसी गया तो एक दिल में एक जज्बा बढ़ता गया। फिर अगेन एंड अगेन सर से इस तरह से मुलाकातें होती रहीं, और सर ने भी अपनी मोहब्बत में जगह दी और अपने बेटों का मुझे लकब दिया। तो इन तमाम क्राइटेरिया में अप्स एंड डाउन भी आए। फिर उसके बाद फेब्रवरी में मैंने पार्टनरशिप की इदारे के अंदर, फेब्रवरी में मैंने पार्टनरशिप की इदारे में, इंस्टीट्यूट में दी, अचीवर कॉलेज लोधरा के अंदर। और जो मेरा दूसरा पार्टनर था, 2 महीने हम साथ चले। उसके बाद उसका इरादा बन गया दुबई जाने का। उसने कहा, जी मेहताब भी, मैं तो जा रहा हूँ, अब आप इस इदारे को खुद ही रखें। अब हमारी जो कमिटमेंट थी वो यूँ थी, क्योंकि मैं भी कश्तियाँ जला के आया था, वो भी कश्तियाँ जला के आया था। हम दोनों ने कहा था कि हम दोनों में से जो भी छोड़ेगा, एक रुपया भी किसी का कोई नहीं लेगा। मतलब अगर मैं छोड़ के जाता हूँ तो जो भी मैंने इन्वेस्ट किया है मैं नहीं लूँगा। वो इन्वेस्टमेंट मेरे पास एक मोटरसाइकिल था, एक लैपटॉप था। मोटरसाइकिल बेच दिया, लैपटॉप बेच दिया, मोटरसाइकिल 97,000 का उसका सौदा बना। वो उसी में उसी बंदे को दे दिया कि ये मोटरसाइकिल रख ले, मुझे पार्टनर बना ले। उसने मोटरसाइकिल रख लिया, पार्टनर बना दिया, ये अलग बात है। मोटरसाइकिल जब बिकने के लिए गया, उसने उसको भी ज़रूरत पड़ी, वो बेचने के लिए जब गया तो पता चला मोटरसाइकिल तो किस्तों पे है, उसकी किस्तें अभी कंप्लीट हुई हैं। तो उसके बाद फिर वो आखिरकार करते कराते वाले अबू ने किसी तरह से उसको वापसी करवाया। अबू ने कुछ पैसे अबू ने दिए, कुछ मैंने दिए, फिर वो मोटरसाइकिल भी वापसी आ गया। और देन उसने कहा, जी मैं जा रहा हूँ। फिर मुझे यूँ एहसास हुआ कि उसकी 3 साल की मेहनत थी, क्योंकि ना शुरू शुरू में अगर कोई बंदा इदारा बनाए, और आपको भी अगर मैं जाके कहूँ कि मैंने इदारा बनाया, तो आप भी कहेंगे कि सबसे पहले अगर बच्चों को भेजने के लिए आप कहेंगे कि यार पत्नी चले ना चले, मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, आपको भी एतमाद की ज़रूरत होगी। तो 3 साल तक उसने चलाया, चाहे वो बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे, टीचरों को हायर कर रहा है, वो बिल्डिंग का रेंट वो दे रहा है। तो देन इसी ख्याल में मैंने फिर उनको कहा कि हम इस तरह से कर लेते हैं। अब उसने काम में था, अभी क्या करना है, क्योंकि कमिटमेंट तो उसकी भी थी कि कोई नहीं लेगा। लेकिन फिर मुझे वही एहसास आया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा, आप हिसाब बना लें, जितने पैसे बनते हैं इसके 50-50 मैं आपको दे दूंगा। अबाउट 2 लाख उसने कहा मुझे दीजिएगा, और 177 जो है वो हमारा ये जो लॉस बनता है इस ये देने, ये भी आप दे दीजिएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख के अंदर वो आ गया। अब वो मैंने एक जिम्मेदारी कबूल कर ली। मैंने कहा चलें ठीक है। अब उसके लिए भी अब दिन रात कोशिश की, स्ट्रगल की, अब मतलब सुबह सवेरे। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे का जो स्टेटस है वो लोधरा के अंदर बड़ा बेहतरीन है। पहले साल, अब क्योंकि मेरा पहला साल था, इससे पहले जो थे वो उमर भाई थे, और BS मतलब फोर्थ ईयर प्रोग्राम में तकरीबन 6 बच्चों के एडमिशन हुए थे। लेकिन इस साल जो है वो 17 बच्चों के BS फोर्थ सेमेस्टर में, मतलब 17 बच्चों के पहले सेमेस्टर में हो चुके हैं, और 5th सेमेस्टर के अंदर भी तकरीबन 12 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। इसी तरह से 9th क्लास के अंदर भी बच्चे हैं, 10th क्लास के अंदर भी बच्चे हैं, 1st ईयर के अंदर भी बच्चे हैं, 2nd ईयर के अंदर भी बच्चे हैं। फर्स्ट टाइम कॉलेज होता है, 2nd टाइम 3 बजे से आनवर्ड वो क्या होती है, एक अकेडमी का सिस्टम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद अकेडमी चलती है 6 बजे 7 बजे तक अकेडमी, फिर उसके बाद इनफ हो जाता है। तो उसके बाद अब इसमें यूँ था कि जब मैंने उस वक्त स्टार्ट किया ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि आया जी कैसे रखूँ। तो उससे पहले मतलब अब ये उस्ताद बैठे हैं इनके सामने तो कोई दूसरी बात नहीं है कि उससे पहले 2 घंटे पहले ये प्रिंसिपल जो था वो आया जी के काम करता था, मतलब झाड़ू वो दे के सफाइयाँ वगैरह करके। और जब ये 8 बजे का टाइम होता ऊपर जाके तैयारी श्यारी करके 3rd फ्लोर पे, फिर मैंने वो जो मेरे बच्चे थे, परेशानी यूँ होती थी कि अब ये परेशानी रहती थी कि उस मकान पे बच्चे स्कूल गए नहीं गए, उन्होंने वापसी आके खाना खाया नहीं खाया, वो मदरसे गए नहीं गए, तो उनको फिर क्या किया, वहीं से लेकर 3rd फ्लोर पर, उसी मकान के 3rd फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया। अब सुबह सवेरे मैं खाना खा के उसको, 1-2-3 स्कूल थे, एकदम प्राइवेट स्कूल तक मैंने अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, अगर आपने करना भी है तो हम फिर भी उसकी आधी फीस हर सूरत लेंगे। फिर आखिरकार एक एक बच्चे की मिन्नत करके एक एक इदारे को दिए, फिर 3 बच्चे जो थे वो पैफ में करवा दिए कि अगर कोई नहीं पढ़ा रहे तो उनके ऊपर फिर ये कर दिया कि थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा मैंने खुद देना शुरू कर दी, कि उनको कह दिया कि डेली बेसिस पे आपने आके मुझे पढ़ना है। और इस तरह से ये जो सारा सिलसिला था वो चलता रहा।
ये हमारा बरखुरदार है महताब, कहानी कहानी इसकी बहुत लंबी है, मेरे पास जब भी आया था तो उसने आके मुझे कहा था मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा वो क्या होता है मोटिवेशनल स्पीकर, मुझे तो नहीं पता इसका। इसने कहा कि बस ये तो मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ। जब मैं इसकी कहानी सुनी तो मैंने ये सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं और किताबें पढ़ के सिर्फ बोलने के फन से आगाह हैं, उसकी निस्बत ये बच्चा जो है ये तो एक ज़िंदगी के सफ़र को खुद गुजार के आया है। लोधरा शहर है, भोलपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है ना
जी, डिस्ट्रिक्ट है
और डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है। तो वहाँ इसने अपना एक, आपने पूरी कहानी सुनी, अपना एक एक कॉलेज बनाया।
श्योर।
उसके अंदर एक रिप्यूटेबल तरीके से काम किया कि लोग जो हैं एस्टैब्लिश कॉलेजों को स्कूलों को छोड़ के बच्चे इसके पास आते हैं। फिर इसको देखते हैं ये छोटा सा प्रिंसिपल है तो वो फिर परेशान, फिर जब बातें सुनते हैं इसकी तो फिर वो कहते हैं। तो इन्होंने मुझे भी बुलाया था एक तकरीब में वहाँ, तो मैं वहाँ गया और जिस तरीके से इसने वहाँ इस इलाके में एक मोहब्बत की फ़ज़ा बनाई है, तो असल में जब हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, तो ये एक एविडेंस है पाकिस्तान में जब तक इस तरह के नौजवान मौजूद हैं और ऐसे ब्रिलियंट लाखों करोड़ों लोग मौजूद। ये वो लोग हैं कि बिल्कुल एक, ये तो उसने कहा ना मिडिल क्लास हो कस, तो मैं यानी बिल्कुल मीगर रिसोर्सेज के साथ और मीगर एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ बहुत ही, तो वहाँ से इस बच्चे ने अपनी एक ऐसी इज्जत बनाई है, इसको सब जानते हैं। फिर इसके अंदर एक ना एंटरप्रेन्योरशिप का एक और इसके साथ दोस्त है, वो बच्चा जो गुजम्फर, क्या नाम उसका जो आता होता है, वो जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है,
सजाद, सजाद।
अच्छा, वो इसी तरह का एक बच्चा है, इसका सब साथी है। उसने वहाँ लोधरा में एक ऐसा बनाया हुआ है कि किसी शख्स को कहीं भी दाखिला लेना है, किसी शख्स को कोई भी इंटरव्यू देना है, किसी ने किसी जगह पर कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना है, तो वो मैं ट्रेन करूंगा कि कैसे करना। वो छोटे से बच्चे को पता नहीं कैसे आइडिया आया कि किसी ने सीएसएस का फॉर्म भरना है, किसी ने कोई फॉर्म भरना है, किसी ने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो वो उस डॉक्यूमेंटेशन करने का तरीका बताता है,
घर बैठे सर्विस दे देता है। आप घर बैठे रहें, अप्लाई भी हो जाएगी, आपका इंटरव्यू की डेट भी आ जाएगी, स्लिप आपको मैं सेंड कर दूंगा, जाके प्रिंट निकलवा लीजिए।
हाँ, अब देखे ना, अच्छा इस तरह से, अच्छा ये इस तरह से, मैं बस बात लंबी हो रही है और लंबी लोग बातें सुनते नहीं है। देखिए मैं बहुत ही दिल के यकीन से आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान में जब तक मेहताब की तरह के लोग हैं ना, जो जिनका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। अब इसने कहा मैंने नबी में दो हदीसें सुनी हैं कि दस्तरखान, जो यतीम का दस्तरखान है ना, वो सबसे बरकत वाला दस्तरखान है, और यतीम की जो कवालत करेगा वो आखिरत में मेरे साथ ऐसे होगा। अब इस बच्चे ने छोटे, कितनी उम्र तुम्हारी अब?
अबाउट
23। अब ये जब ये 21 साल का था तो इसने सोचा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्यों ना करूँ, इसके पास अपने पैसे नहीं है। आपने सुना मोटरसाइकिल इतने का, इसने 7 बच्चे लेकर, एक घर लेकर वो 7 बच्चे रखे हुए हैं और मैं उन बच्चों से मिल के आया, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो तकरीर करते हैं, उठाओगे सुनाते हैं, कॉन्फिडेंट बच्चे हैं। और वो बच्चों के लिए ये नहीं कि कोई मॉन्टेसरी सिस्टम को फैलाना, ये महताब है, बस मोहब्बत है इसकी। तो ये उसके बच्चे हैं। अब ये इसने 19 साल की उम्र में फैसला किया कि मैंने ये 3 बच्चों का ख्याल रखना है, और उसने वो 7 बच्चे और वो 7 बच्चे को कहता भाई इतना ही मैं कर सकता हूँ, तो ये 7 बच्चों को मैं अपने बच्चों की तरह एक बड़ा जिंदगी में सेट करके करूँगा
इंशाल्लाह,
इंशाल्लाह। तो इसलिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में वो बातें करते हैं लोग जो कुछ करना नहीं चाहते, जो उसके लिए कुर्बानी नहीं देना चाहते, जो अपना हाथ पैर रख के बैठे हैं चुप करके रिसोर्सेज को खाए जा रहे हैं, जो खुद जनरेट कर रहे हैं ना इस जैसे लोग, और ऐसे बेशुमार लोग हैं। तो मेहताब उनमें से एक है और मेरा दिल चाह कि मैं इसकी कहानी आपको सुनाऊँ, और इन जैसे नौजवानों को देखकर मेरा, मुझे पक्का यकीन है पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, बहुत मुस्तकबिल। देखना यह कि मैं और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम कुछ हिस्सा कर पाकिस्तान में हिस्सा डाल रहे हैं। रोजाना शाम को सोते वक्त देखना चाहिए कि मैंने आज सारी जिंदगी जो गुजारी अपने लिए ये किया, बीवी बच्चों के लिए ये किया, पाकिस्तान के लिए क्या किया। थैंक यू मुख्तार, जीते रहो,
शुक्रिया,
तू बहुत लाडला है, प्यारा है, अल्लाह ताला तुझे बहुत बरकत दे। थैंक यू।